रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ में ईरा. शो लेके आए हैं AW लॉ शो, विच इज ब्रॉट टू यू बाय AW लॉ ग्रुप. विल कौन है AW लॉ ग्रुप, से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड इन डेट सेटलमेंट, इमिग्रेशन, डेट कंसोलिडेशन. जिस तरह की भी आपको तकलीफ है, हम कई बार इस शो में बात कर चुके हैं. खास करके इमिग्रेशन के लिए वी हैव अटर्नी आसमा इन द स्टूडियो टुडे. लास्ट वीक वी हैड वकास इन द स्टूडियो, FLC वकास, एंड व्हेन ही वाज हियर वी हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इमिग्रेशन. सो लिसनर्स, अटर्नी आसमा जो कि इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं, शी इज इन द हाउस टुडे. आप फोन करके उनसे इमिग्रेशन वाले सवाल पूछ सकते हैं. शी विल ऑल्सो बी टचिंग अप अ लिटिल बिट अबाउट डेथ सेटलमेंट और SSI की बात भी वो करेंगी. तो आप लोग फोन कर सकते हैं 5107701550 पर. दैट्स 5107701550. Otherwise, you can always call the office number on 5109368211, 5109368211, or go to their office, go to their website, whichever you want. Office address is 37600 Central Court, Suite 207, Newark. Or jo website hai, that is awlawgroup.com. Chaliye, without any further ado, let's speak to attorney Asma. Asma, welcome to Radio Zindagi. Welcome to the show.
Thank you.
How are you doing?
I'm good. How about you?
I'm good, doing good too. Thank you very much for asking. कोई नहीं पूछता, यू सी. चलिए काम की बात करते हैं, इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं. आई नो वीव टॉक्ड अ लॉट अबाउट H1s एंड H4s, एंड लास्ट टाइम वी ऑल्सो स्पोक अबाउट H4 EADs. लेट्स स्पीक अबाउट द अदर काइंड ऑफ वीजाज टूडे. फॉर एग्जाम्पल I-30, K-Visa, fiance. लेट्स स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट दोज. सो लेट्स बिगिन विद I-30. वट इज एन I-30 फाइलिंग?
So I-130 is basically a marriage-based visa. And जैसे अगर आपने शादी की है किसी नॉन US citizen से और आप उसको US में लाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है कि आप I-130 petition फाइल करते हैं USCIS CIS के साथ. तो दिस इज नोन एज I-130 फाइलिंग.
I-130, ओके. ऑल राइट. और उसके बाद में वट आर द वीजा कैटेगरी दैट अप्लाइज? How does it work then from there?
So I-130 आप पहले फाइल करते हैं, I-130 अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको नेशनल वीजा सेंटर जो है वो एक लिस्ट भेजता है डॉक्यूमेंट्स की कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें. आप इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, फिर आपका जो दूसरे मुल्क में जो US काउंसलर है वो वीजा स्टैम्प इशू करेगा. तो अब इसमें एक दफा आपकी I-130 फाइल हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है. जब तक ये अप्रूव ना हो आपका स्पाउस यहां पर नहीं आ सकता. लेकिन चूंकि I-130 बहुत ज्यादा टाइम लेती है, I-130 फिर नेशनल वीजा सेंटर प्रोसेसिंग, तो इसमें तकरीबन 1-1.5 साल लग जाता है, कहीं भी नहीं जाता.
ओके.
तो इसलिए फिर उसमें USCIS ने एक और ऑप्शन रखा हुआ है, K-3 वीजा. जैसे किसी की अगर हस्बैंड या वाइफ जो है वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, I-130 पेंडिंग है, लेकिन आप इतनी देर तक नहीं रह सकते, या आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में है, तो आप इतनी देर तक दो साल बहुत लंबा अरसा होता है और आप इतना दूर अपनी फैमिली से ज्यादा अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते, तो फिर आप K-3 वीजा फाइल कर सकते हैं. तो K-3 वीजा का ऑप्शन उनको उनके लिए है जिनकी I-130 ऑलरेडी पेंडिंग है. ऐसे स्पाउसेस जिनकी I-130 ऑलरेडी पेंडिंग है, तो जब उनको K-3 वीजा मिलता है तो वो US में आ सकते हैं, और जैसे ही उनकी I-130 अप्रूव होती है वो तब तक US में रह सकते हैं. जैसे ही उनकी I-130 अप्रूव होती है वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ऑलराइट. सो इट्स अ वर्क अराउंड कि तब तक for the time being you do
it. For the time being, exactly.
All right. Listeners, again we have attorney Asma in the studio. This is the AW law show. Aap log phone karke immigration se related koi sawal puchna chahe, H1s, H4, L1, L2, what else, K3, green card, kuch bhi puchna chahe attorney Asma se, you can call us on 5107701550. That's 5107701550. Otherwise you can also fix an appointment with attorney Asma on her office number. नंबर है 5109368211, 5109368211. अटर्नी आसमा, वी हैव अ कॉलर, लेट्स सी व्हाट दे वुड लाइक टू आस्क यू. हेलो, यू आर ऑन एयर विद अटर्नी आसमा.
हाय डॉक्टर. हाय अटर्नी आसमा.
हेलो, मुझे आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है.
कैन यू बी लाउडर?
आप थोड़ा,
या कैन यू हियर मी नाउ?
होल्ड ऑन. यस, I can.
Please go ahead.
I have a question about my citizenship. Actually, I apply in August, end of August.
Okay.
And I have already fingerprint done in September 16.
Mm-hmm.
but till now I did not get my interview. It's like almost 6 months.
आपने कौन से सर्विस सेंटर पे फाइल किया था, आपको याद है?
But my local office is San Francisco.
अगर आपको याद हो, आपका जो रिसीप्ट नोटिस वो देते हैं उस पे सर्विस सेंटर का नाम लिखा होता है, तो अगर आपको वो उसको आप देख सकें तो आप ऑनलाइन जाके चेक करें कि उस सर्विस सेंटर पे अभी प्रोसेसिंग टाइम क्या है. और अगर आपको लगता है कि आपकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन ज्यादा पीछे पड़ गई है, ज्यादा टाइम ले रही है, तो फिर आपको उनको कस्टमर सर्विस को ऑनलाइन कॉल करके एक टिकट सबमिट कर सकते हैं, तो फिर 30 डेज के अंदर अंदर दे हैव टू गेट बैक टू यू. सो अगर आपसे ये नहीं होता, आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप हमारे ऑफिस कॉल करें. हमारा नंबर है 510-936-8211 एंड देन वी वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू.
Hold on, please. 536-8211. 936-8211. Yeah, because I called them. They said, what is your local office? I told them it's San Francisco. They told me we are still working on the June application.
Oh, okay. देखिए, मुझे भी आपके सर्विस सेंटर का नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टाइम नहीं बता सकती. आप ऐसा कीजिएगा, प्लीज मेरे ऑफिस कॉल कीजिए, देन आई कैन हेल्प यू मोर. अभी हमें और कॉल्स भी लेनी है, तो आप ऑफिस कॉल कीजिए, वहां पे हम आपको डिटेल में इसका आंसर दे सकते हैं.
ओके, थैंक यू सो मच.
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. लेट्स स्पीक टू अवर नेक्स्ट कॉलर. हेलो, यू आर ऑन एयर विद अटॉर्नी आसमा.
Yeah, I got a question for the attorney.
जी, प्लीज.
Somebody holds the green card and he lives over 2 years out of the country. Is he allowed back, or what's the procedure of coming back?
So generally they should be allowed back, but when they are entering in the U.S., they must expect critical questions from the port of entry officer. तो वो उनसे जरूर पूछेंगे कि आप 2 साल तक बाहर रहे, आपके intentions क्या थे, आपने क्या US में कोई taxes file किए हैं, क्या US में आपका कोई bank account है, ऐसी चीजें जिनसे ये पता चले कि आपके intentions क्या है, क्या आप permanent resident रहना चाहते हैं या फिर आपने ये सिर्फ आने जाने की सहूलत के लिए रखा हुआ है.
अच्छा,
तो generally उनको आने देना चाहिए, लेकिन उनको problems हो सकती हैं वापस US में enter होने के लिए.
दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया हो, 10 साल पूरे हो गए हो, तो उसका कोई है चांसेस कि रिन्यू ना करवाया हो?
कितने साल पहले एक्सपायर हुआ?
ये अभी हुआ है, रिसेंटली 1-2 महीने हुए.
1-2 महीने हुए. आप ऐसा कीजिए, आप प्लीज मेरे ऑफिस कॉल कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स देख के आपको बता सकती हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है वो बहुत डिटेल में है. हमारे ऑफिस का नंबर है 510-936-8211. और आपका नाम क्या है?
936-8. मेरा नाम वेदपाल
जी. 936-8211.
8211. Thank you very much, Asma ji.
Thank you.
No problem at all, sir. Thank you very much for calling in. We were getting another call, but looks like it got dropped. कोई प्रॉब्लम नहीं है लिसनर, आप हमें वापस जरूर कॉल कर सकते हैं. मीनवाइल, लेट मी क्विकली रिमाइंड यू दैट दिस इज द AW लॉ शो ब्रॉट टू यू बाय AW लॉ ग्रुप एंड वी हैव अटर्नी आसमा इन द स्टूडियो टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन. शी विल बी टचिंग अ लिटिल बिट अबाउट SSI बेनिफिट्स एंड मे बी डेथ सेटलमेंट इज वेल. सो अटर्नी आसमा, जब तक हमें कॉल्स नहीं आती तब तक हम आगे बात करते हैं.
Sure.
आपने K3 वीजा के बारे में बताया, सो K3 वीजा हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अ फियांसे वीजा?
So fiancé visa is known as K1 visa. Fiancé visa जो है ये आपको K3 visa उनके लिए है जिनकी already I-130 pending है. Fiancé visa उन लोगों के लिए है जिनके लिए कोई petition file नहीं हुई, जैसे आपकी अगर engagement हो जाती है किसी alien से and you want to bring that person here in the US, आप इतना time waste नहीं करना चाहते I-130 filing में, और अभी आपकी शादी नहीं हुई. अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आप fiancé visa file नहीं कर सकते, because fiancé visa बहुत clearly कहता है कि it's only for the fiancés, it's not for the married couples.
Okay.
तो आपको ये देखना है कि this is the difference between I-130, कि I-130 is for spouses, those who have already been married, and fiancé visa is for fiancés. तो इसमें ये है कि आप ये अपने fiancé के लिए कर सकते हैं, आपको अपने fiancé से पिछले 2 साल में एक इन पर्सन मीटिंग जरूर होनी चाहिए.
Okay.
और उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है, अगर ये आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल है कि आप दोनों मिल सकें, या फिर आपका कल्चर फैमिली ट्रेडिशन ऐसी है जिसमें वो लड़के लड़की को मिलने नहीं करते, तो फिर आप वेवर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर अ वेवर इट्स प्रीटी हाई. तो इसलिए वो कहते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर एक इन पर्सन मीटिंग होना जरूरी है. और दूसरा ये भी कि आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप किसी को फियांसी वीजा पे इधर बुला रहे हैं, फिर आपको 90 डेज के अंदर अंदर अपने फियांसी से शादी करनी होगी.
Okay.
और अगर आप नहीं करेंगे तो फियांसी वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.
अटर्नी आसमा, वी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, लेट्स स्पीक टू अवर नेक्स्ट कॉलर, देखते हैं व्हाट दे लाइक टू आस्क यू. हेलो, यू आर ऑन एयर विद अटर्नी आसमा.
हाँ जी आसमा जी, एक क्वेश्चन ये है कि वो मैंने, मैं सिटीजन हूँ, अपनी बेटी का मैंने वो फाइल किया था मेरे ख्याल 2006 में।
ओके
तो अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं है। वो मतलब पाकिस्तान में क्या था, फिर वो कनाडा मूव हो गई तो मैंने एड्रेस तो चेंज करवा दिया था।
ओके
लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है उसका।
आपका नाम क्या है?
मेरा नाम है सैयद एफ बुखारी।
अच्छा सैयद साहब, ऐसा है कि 2006 के लोग जो हैं वो अभी तक वेट कर रहे हैं, अभी वो 2004 के वीजाज पे काम कर रहे हैं। आपको वीजा बुलेटिन पे चेक करना होगा कि क्या 2006 में जिन लोगों ने फाइल की थी उनका नंबर आ गया है या नहीं। अगर नहीं आया तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा। आई थिंक अगर अभी आपकी बेटी को एक साल दो साल और इंतजार करना पड़ेगा, और जब प्रायोरिटी डेट करंट हो जाती है तो फिर वो आपको ईमेल करते हैं नेशनल वीजा सेंटर की तरफ से, फिर आपको ईमेल आएगी कि अब आपने काउंसलेट में जाकर कि अब आप नेशनल वीजा सेंटर की ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन लोकल काउंसलेट को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अभी आप सिर्फ वेट कीजिए।
इंटरव्यू वहीं कनाडा में ही होगा अगर हुआ तो?
अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो जी कनाडा में ही होगा।
हाँ जी एड्रेस चेंज किया है। अच्छा थैंक यू वेरी मच।
यू आर वेलकम सईद।
थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो यू आर ऑन एयर विद अटॉर्नी आसमा।
हाय दिस इज सिटी। आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग H4EAD।
श्योर।
सो करंटली आई एम ऑन H1 वीजा एंड आई हैव अप्लाइड फॉर H4EAD।
ओके
सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक प्लेस फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस?
सो यू नो व्हाट, usually it takes 90 days, but depending on your service center, it could take longer.
Okay.
Okay.
So is there any way that we can track it?
No, there is a way. You could check the online status, the status of your case online. Aapko jo unhone I-797 receipt notice diya hai, it will have a receipt number. So by using this, you can check the status online. And if you do not have that facility, you can also call the customer care service number and ask them. So I-797 mein aap check karein jo three beginning digits hain. That will tell you whether the case is in the Nebraska Service Center, California Service Center, Vermont Service Center. To usko dekh kar phir aap service center ka processing time bhi check kar sakti hain USCIS ki website pe.
Okay, thank you.
You're welcome.
Gee, thank you very much for calling in. Hello, hello. You're on air with attorney Asma.
हेलो
हेलो
हाँ जी मेरे पेरेंट्स है दो साल से ऊपर है उधर इंडिया में उनके पास ग्रीन कार्ड है।
अच्छा
तो उसके क्या प्रोसीजर हो सकता है, आ सकते हैं या नहीं आ सकते?
सर आप बैकग्राउंड में रेडियो बंद करेंगे प्लीज, आई थिंक एको हो रहा है बहुत ज्यादा।
हाँ
जी
मेरे पेरेंट्स ऐसे है ना कि इंडिया में है
वो आना चाहते हैं, वो आप पूछ रहे हैं आ सकते हैं या नहीं?
नहीं हाँ वो दो साल से ऊपर है उनके पास ग्रीन कार्ड है, दो साल से ऊपर हो गया उधर।
अच्छा आपका नाम क्या है?
मेरा नाम नरेश है जी।
नरेश जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो आ सकते हैं लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री पे ऑफिसर्स जो हैं वो उनसे बहुत ज्यादा सवालात करेंगे कि आप इतनी देर तक कंट्री से बाहर क्यों रहे, आपका क्या कोई यूएस में बैंक अकाउंट है, आपने कभी टैक्स रिटर्न फाइल की, आपका इंटेंशन तो यहां रहने का नहीं था, आप दो साल से ज्यादा अरसा अगर बाहर रहे। यूजली अगर आप एक साल से ज्यादा अरसा बाहर गुजारें तो जब आप वापस सेंटर होंगे तो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री ऑफिसर वाले प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर कुछ ऐसा है आपकी सिचुएशन, आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं केस, तो प्लीज हमारे ऑफिस डायल करें 510-936-8211 क्योंकि अभी मुझे दूसरे कॉलर्स को भी रिस्पॉन्ड करना है।
जी ओके थैंक यू।
यू आर वेलकम।
जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक वन मोर कॉल। हेलो यू आर ऑन एयर विद अटॉर्नी आसमा।
हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जी। मेरे मॉम विजिट कर रहे हैं अभी, विजिटर वीजे पे आए हैं।
जी ठीक है।
हाँ जी तो उनके लिए ग्रीन कार्ड फाइल करना है क्या, इट्स द राइट टाइम टू फाइल?
यस आई थिंक यू शुड फाइल बिफोर दे लीव, बिकॉज इसका एक बेनिफिट तो ये है कि अगर आप अभी उनके लिए ग्रीन कार्ड फाइल करती हैं तो उनको 90 डेज के अंदर वर्क परमिट पे मिल जाएगा जिससे आप उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर ले सकती हैं। तो फिर अगर आपको उनके लिए उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना हो आप वो कर सकती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी उनके लिए अप्लाई कर दें बिकॉज करंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पता नहीं बाद में किस टाइप के वीजाज बैन कर दें।
तो इसका प्रोसीजर क्या, मुझे वहां जाना पड़ेगा ऑफिस में कि या ऑनलाइन हो जाता है?
नहीं ऑनलाइन नहीं होता, आप हमारे ऑफिस कॉल कीजिएगा 510-936-8211 तो हम आपको प्रोसीजर बता सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं जो कि फिल करने हैं और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने होंगे।
ओके, मेरे पास तो पेन ही नहीं, आपका नंबर लिखना था मैंने
जी, मैं बताती रहूंगी, आप बाद में नोट कर लीजिएगा जब आप फोन रखेंगे, मैं ऑन एयर रेडियो पे बताती रहूंगी, आप बाद में नोट कर लीजिएगा।
आपका ऑफिस
न्यूयॉर्क में है जी?
अच्छा जी, ठीक है
ना, आप नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगी। नंबर है इनका 5109368211, दैट्स 5109368211। अटर्नी आसना, बैक टू बैक हमें कॉल्स बहुत सारी आ रही है, बट लेकिन थोड़ा सा गाना बजाना भी जरूरी है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड अ स्पेशल सॉन्ग ऑन अ वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, एंड आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग। दिस इज आज जाने की जिद ना करो बाय अरिजीत सिंह। एंजॉय द सॉन्ग, ठीक है जा। करनी पड़ती है, लेकिन गाना फेड करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 एएम एंड 99.7 एफएम HD3। मैं हूं ईरा, शो चल रहा है द एडब्ल्यू लॉ शो, ब्रॉट टू यू बाय एडब्ल्यू लॉ ग्रुप। जो लोग फोन करना चाहते हैं इमिग्रेशन के सवालों को लेके या SSI बेनिफिट्स या डेथ सेटलमेंट को लेकर, थोड़ी देर इंतजार करें बिकॉज अटर्नी आसमा विल बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट SSI बेनिफिट्स। तो उसके बाद में आप अपने कॉल्स जो है वापस कर सकते हैं ऑन 5107701550। अदरवाइज फील फ्री टू कॉल द ऑफिस नंबर, AW लॉ ग्रुप का ऑफिस नंबर है 5109368211, दैट्स 5109368211। इस नंबर पे आप अभी भी फोन कर सकते हैं, द टीम ऑफ AW लॉ ग्रुप विल बी एबल टू हेल्प यू विद एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। सो जर्नी आसमा, टॉकिंग अबाउट SSI बेनिफिट्स, क्या होते हैं SSI बेनिफिट्स?
सो SSI बेनिफिट्स जो हैं, दे आर अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इनको नॉर्मली हम बोलते हैं सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम। सो दिस इज डिफरेंट देन सोशल सिक्योरिटी इनकम। एंड इसके लिए यह है कि अगर आप डिसेबल हैं, आपकी उम्र 65 ईयर से ज्यादा है, या आप यंग हैं पर आप डिसेबल हैं, आप काम नहीं कर सकते, सो यू कुड बी एलिजिबल फॉर SSI बेनिफिट्स।
ओके, SSI benefits, all right. तो किसी ने कभी अगर US में काम ही नहीं किया हो उन्हें मिल सकते हैं क्या SSI benefits?
जी बिल्कुल उन्हें मिल सकते हैं, वो एलिजिबल हो सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप यंग हैं बट इफ यू आर डिसेबल, जैसे आप ब्लाइंड हैं, आपको दिखता नहीं, आपके हाथ काम नहीं कर सकते, अगर आप काम नहीं कर सकते तो देन यू कुड बी एलिजिबल फॉर SSI benefits.
और इमिग्रेशन स्टेटस का इस चीज पे कोई फर्क पड़ता है एलिजिबिलिटी?
बिल्कुल इस पे फर्क पड़ता है. जैसे अगर आप H4 EAD पे हैं या आप H1 पे हैं तो आप SSI benefits के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते.
नहीं हो सकते.
इसी तरह अगर आप ग्रीन कार्ड पर आए हैं फैमिली बेस्ड स्पॉन्सरशिप पे तो आपको 5-7 साल तक वेट करना पड़ता है बिफोर दिस दैट यू कुड बी एलिजिबल. अगर आप सिटीजन हैं तो फिर देन यस देन यू आर एलिजिबल, बट इन अदर सिनेरियोस केस बाय केस डिफर करता है.
ऑल राइट ओके, वी हैव पीपल हु आर वेटिंग टू स्पीक टू यू, तो मेरे ख्याल से हमें कॉल्स कंटिन्यू करनी होंगी बिकॉज देयर आर पीपल वांट टू आस्क यू क्वेश्चन. हेलो यू आर ऑन एयर विद अटॉर्नी आसमा. हेलो आर यू देयर?
यस हाय.
बताइए सर.
हेलो
जी.
हाय. Or a question, I wanted to know if I have an approved I-140 and my wife has an H4 EAD. If I switch jobs, can my wife continue working on the H4 EAD?
Well, देखिए H4 EAD जो है वो H1 पर based है. तो आप जब जॉब स्विच करेंगे आपको H4B चेंज करवाना पड़ेगा और I-140B आपको पोर्टेबल करवाना पड़ेगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे. बट एज लॉन्ग एज आपकी करंट कंपनी जो है, सॉरी आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, वो I-140 विदड्रॉ नहीं करते, आपकी बीवी काम कर सकती हैं उस H4EAD पे. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इन द मीन टाइम आपके लिए जब भी पॉसिबल हो आप अपना पुराना I-140 जो है उसकी डेट नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दें.
ओके बट मेरी वाइफ काम कर सकती है ना?
जी वो काम कर सकती हैं.
ओके और अगर मेरा वीजा H1 ट्रांसफर जो होता है, इफ आई एम नॉट एबल टू मीट द April 3rd डेट, डज दैट अप्लाई फॉर एवरीवन, द सस्पेंशन रूल ऑन द प्रीमियम प्रोसेसिंग?
यस. इट्स राइट नाउ इट्स एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ H1 वीजास. So it's up to you. अगर आपको प्रीमियम प्रोसेसिंग करनी है, I would suggest you के apply as soon as possible before April 3rd.
Okay, and
sir, I'm sorry to transfer. So can you hear me? Can you hear me? Okay, I'm sorry to interrupt here, but any more questions that you'd like to ask, please call them on the office number.
Okay. I just have one last question.
No, please, हमारे पास देखें टाइम नहीं है, हमें दूसरी कॉल भी लेनी है, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं. तो आप प्लीज मेरे ऑफिस कॉल कर लीजिएगा 510-936-8211.
ओके, आई मीन दे विल बी एबल टू हेल्प यू विद मोर क्वेश्चंस. जो भी आप पूछना चाहते हैं ऑफिस नंबर पे भी आपको वो हेल्प कर पाएंगे. सो 510-936-8211 इज द नंबर वेर यू कैन कॉल. लेट्स टेक आवर वन लास्ट कॉल फॉर द डे. हेलो. Okay, last call for the day was Bibip. Okay, so Attorney Asma, I know that you have certain things that you would also like to discuss about debt settlement.
जी.
So why don't we talk about that?
तो हमारा office जो है वो debt settlement भी काम कर सकता है, करता है. So ऐसा होता है कि debt settlement में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो फिर पूछते हैं कि अगर मैं what happens if I'm behind the payments. तो अगर आप payments पूरी नहीं करे credit card पे या loan car loan पे किसी भी type के loan पे, तो फिर उस पर होता ये है कि वो जो creditor lender जो है वो पहले आपसे collect करने की कोशिश करते हैं. अगर वो नहीं हो तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो आपका अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं कलेक्शन एजेंसी को.
जी.
अब जो कलेक्शन एजेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है बैंक के मामले में, तो अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो आपका केस जो है अपने एक अटर्नी को रेफर कर देंगे.
okay.
और जो अटर्नी है वो फिर आपके खिलाफ लॉ सूट फाइल करेगा. तो अगर उस स्टेज पे आप अटर्नी की फीस और वो डेट नहीं पे करते तो फिर आपके खिलाफ वो जजमेंट ले सकते हैं. तो हमारे पास इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं और हमने 7,000 से ज्यादा केसेस रिजोल्व किए हैं.
wow.
लेकिन इसमें ये होता है कि यू नो वट, हर केस डिफरेंट होता है. हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपका डेट सेटलमेंट जो है 100% रिजोल्व करवा देंगे, बट वी हैव अ 90% सक्सेस रेट. और हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें 50 grand जो है वो 50,000 डेट है, हमने उसको 10K कर दिया है.
जी जी जी.
और फिर ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत बार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ तो ऑलरेडी जजमेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ. तो हम ऐसी सूरत हाल में भी डेट सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर अमाउंट जो है वो हाई होगी. जजमेंट से पहले ज्यादा चांसेस हैं कामयाबी के, लेकिन जब जजमेंट हो जाती है तो फिर हमारे पास कामयाबी के इतने चांसेस नहीं है, तो फिर अमाउंट हायर होगी. और फिर इसमें जब आती है बात कि किस किस्म की डेट सेटलमेंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी यह है कि हम हर किस्म के क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन्स, मेडिकल हॉस्पिटल बिल, सेकेंड लोन, लॉ सूट्स और स्टूडेंट लोन. सो इस टाइप के केसेस जो हैं, इस टाइप के जो लोन्स हैं वो हम सेटल कर सकते हैं.
All right. So, listeners, debt settlement ki jahan tak baat hai, well, they have a very, very good success ratio. Aap unse zarur contact karein, AW Law Group se, 510-936-8211 is the number. Otherwise, unki website pe ja sakte hain, aap awlawgroup.com par. So, Attorney Asma, we have about less than two minutes to go, but there are calls still coming in. To kuch ek logon se baat aur kar lete hain.
Please,
all right. Hello, you're on air with Attorney Asma.
Hi, Asma. Thank you for taking my call. My name is Rahul. I wanted to ask a quick question for you.
Sure.
I wanted to know, under circumstances where you do an H-1B transfer, how much time does it take to get your receipt since H-4 suspension is coming
in? Well, usually it takes 2 weeks from the date of filing.
And can you work on your H-1 transfer receipt?
Yes, you can.
Regular processing?
Yes, you can.
Okay, thank you.
Thank you.
Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Attorney Asma.
Hello.
Yes, sir, please go ahead.
Yeah, my question is, can I apply for H-1 with I-97 form?
I-797. Form? Ye toh aapka receipt notice pe number likha hota hai. I don't know aap kis form ki baat kar rahe. H-1 ke liye toh I-129 form hota hai.
No, I didn't receive my OPT card yet, EAD card
achha.
Yet. So, I received it.
Okay.
Received. Yeah, so you will be available on this number?
Yes, I will be.
All right. So, zarur phone kare 510-936-8211 par. Attorney Asma, we are at the end of our show here today. Wish we could speak to you more about this. But thank you so much and we'll see you on Friday afternoon at 12 o'clock.
Thank you, Ira.
And thank you, listeners, for tuning in. Have a great, great evening. I will see all of you tomorrow morning at 8. Jiye jao.